الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت الأسر موضوع سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاید باری تعالیٰ ہے بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے ہے پھر وہ جو کرتے رہیں وہ ان کو بتائیں گے پچھلی آیہ کریمہ کا حصہ جو ہے اس میں تفریق کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے جو فرقہ بندی کی جاتی ہے اور بنیادی طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط کھینچے زمین پر اور ایک خط سیدھا اور اس کے ساتھ متصل متعدد خطوط جن کا رخ سیدھا نہیں تھا کھینچ کے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم ایسے ہے جیسے یہ سیدھا خط ہے اور اس سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں ان پر شیطان ہے اور وہ سارے راستے حق سے باہر ہیں۔ تو حدیث شریف کی اس مفہوم عالی پر جب غور کیا جائے تو بات بہت واضح ہے کہ جہاں جہاں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس میں کمی و بیشی ہر دو طرح کا تجاوز و کمی دونوں طرح زیادتی ہے اور جتنی کوئی زیادتی کرے گا جتنی کوئی آمیزش کرے گا اتنا وہ اصل سے دور ہو جائے گا اور جو کوئی جیسا کر رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا کام اللہ کے حوالے ہے پھر وہ جو کرتے ہیں وہ ان کو بتائیں گے۔ ایک حصہ ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا، ایک حصہ ہے کسی کے محفوظ ہونے کا سبب ہونا۔ سپرد امانت کے طور پر ہے، اس کی کمی بیشی نہیں ہے، اور کسی کو حفاظت کے حوالے سے کہ جیسا ہے ویسی حفاظت، چونکہ اللہ کریم کی شان قدرت ہے، وہ غفور الرحیم قادر مطلق ہے، کوئی شے اس کے دسترس سے باہر نہیں، خالق حقیقی ہے۔ تو اللہ کریم کے حوالے سے مراد کہ کوئی جیسا کام کر رہا ہے اسے محفوظ کر لیا جائے گا اور حساب کتاب کے دن، چونکہ یہ جتنا نظام حیات ہے یہ کوئی محض کھیل تماشا نہیں ہے، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری تعلیم فرماتی ہیں، سنت خیر الانام عملی صورت ہے اور اجماع ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اب اس ساری باریکی کو اور اس سارے حکم کو جو مخاطب ہے حضرت انسان، اللہ کریم نے اسے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق وہ سمجھ رکھتا ہے۔ اب اس سارے نظام حیات میں جیسا وہ عمل کر رہا ہے اس کا محفوظ ہونا، یعنی وہ جمع ہو رہا ہے اور ایک دن آئے گا تو سارا جو کچھ اس نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آگے بھیجا، تو مراد یہ ہے کہ وہ جمع ہو رہا ہے اور جس دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس دن وہ حساب کتاب میں لایا جائے گا۔ اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے، اللہ کریم کو مخلوق پر سختی کرنا پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس طرح کے پہلو ارشاد فرمائے گئے ہیں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں جتنا کوئی نقصان اٹھاتا ہے وہ اپنے کسی عمل کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کریم تو ایسے مہربان ہیں، ایسے رحیم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندے مومن کو کہیں کوئی ایک کانٹا اگر چپ جائے تو کتنی ہی اسے نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور کتنی ہی اسے بخشش عطا ہوتی ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کی عطا کو جب دیکھا جائے، اس کی معافی کو دیکھا جائے، تو اللہ کریم معاف فرمائے، میرے الفاظ کی کمی بیشی لیکن दिल कहता है कि ऐसे लगता है जैसे अल्लाह करीम बहानों से अपनी मखलूक को माफ़ फरमाते हैं, कि कोई बहाना हो जाए। चूँकि कुरान करीम की आया करीमा ही बयान फरमाती है कि अल्लाह करीम ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, कुरान करीम की आया करीमा है। तो समझ आती है कि ये इतनी आम माफ़ी और इतना करम और एहसान अल्लाह करीम को अपनी मखलूक कितनी प्यारी है, तो बहानों से वो माफ़ी अता फरमाता। अब ज़िद और अनाद, तकब्बुर, मुकाबिल आना, ये वो सूरतें हैं जो तबाही से अमकिनार करती हैं। तो जो कुछ जमा हो रहा है इसे वो फरिश्ते जो लिखने पर मुकर्रर हैं लिख रहे हैं, जैसा अमल है उस तरफ का फरिश्ता उसकी किताब में लिख रहा है। फरमाया कि फिर उन्हें बताया जाएगा, यानी वो हिसाब किताब के दिन ये सूरत पेश आएगी। आज मौका है मौजूद सामीन कराम अपने आमाल को दुरुस्त करने का, आमाल की दुरुस्तगी के लिए रहनुमाई मौजूद है, रहनुमाई को समझते हुए और अमली सूरत तक पहुंचना, ये इस्तादाद अल्लाह करीम ने हर इंसान को अता फरमाई। यहाँ एक पहलू को ज़रूर नहीं भूलना चाहिए कि इबादत की दावत, इबादत का इख्तियार करना और इबादत की दावत, सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी है वो अपना जो हुक्म है अपने लिए उसका समझ करते हुए उसके तहत आना, उसे इख्तियार करना, यानी दीन इस्लाम का समझना और उसे इख्तियार करना। जहाँ इख्तियार करने की बात आएगी उसी में एक हिस्सा मखलूक तक दीन के पहुँचाने का हुक्म भी दाखिल होगा। अब उसका दर्जा इख्तियार करने से पहले नहीं है, उसका दर्जा इख्तियार करने के बाद। अब जब बंदा इख्तियार करते हुए दावत हक जो है वो मखलूक को देता है तो वो दावत दो पहलुओं से मखलूक तक जा रही है, एक हिस्सा जो अमली सूरत से है, दूसरा हिस्सा जो दावत दी जा रही है उसमें अल्फाज हैं, आवाज़ है, किसी तरफ का चलना है, किसी अच्छाई का दिखाना है, किसी तरफ मुतवज्जे करना है, मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। लेकिन जो तबलीग है उसकी जो खूबसूरत तरीन सूरत है या अंदाज़ है वो अमली सूरत है, कि जितना कोई बामल होगा ये सबसे आला हिस्सा है तबलीग। अब जब इख्तियार करते हुए मखलूक तक पहुंचाया जा रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम इरशाद फरमाया गया कि ऐ मेरे हबीब, आपको इन पर निगहबान मुकरर नहीं फरमाया गया कि कहीं पाबंद कर दें, कहीं सख्ती से ये अमल कर इनसे कराया जाए और इन्हें मजबूर किया जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ये इरशाद फरमाया गया है तो माँ और शुमा की क्या हैसियत है कि हम ये समझें कि अमूमी तौर पर जो लोगों से जिन्हें हम दावत दे रहे हैं इनको इस तरह पाबंद किया जाए कि वो दावत जो है उस पर वो अमल कर रहा हूँ। जहाँ रियासत के हवाले से, और ये याद रखिए कि रियासत इंसानी माशरे में एक इंतहाई अहम जुज़्व है, एक अहम हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी का, चूँकि किसी शय के नफाज के लिए एक रियासत का मौजूद में होना लाजमी है। वगरना इनफरादी तौर पर जब किसी बेहतरी के नफाज के लिए भी या जजा व सजा के लिए भी कोशिश की जाएगी तो उसके नताइज जो हैं उसमें सख्ती पैदा होगी। मसलन अगर कोई कत्ल करता है और उसे जवाबन कोई कत्ल करता है तो पहला जो कातिल है वो भी कातिल है, जो दूसरा है वो भी कातिल, तो मुआशरे में देख लें क्या यही सूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई कत्ल करता है और उसे निज़ाम सजा देता है तो निज़ाम को कोई कातिल नहीं कहता। जिनके फ़र्द को फांसी होती है या सजाए मौत होती है वो निज़ाम को कातिल नहीं ठहराते, वो फांसी की जो सज़ा लिखने वाला या उस निज़ाम में गुजरने वाले जो अफराद हैं उन्हें उस दुश्मनी के तहत नहीं लेते कि उनसे वो बदला लिया जाए। इसीलिए जब रियासती हिस्सों पर बात आती है तो भी इंतहाई अहम बात है, और रियासत जो है वो नाम से नहीं होती। खित्ते ज़मीन जो है उसकी पहचान भले मौसमों से हो, भले ज़मीनों ज़मीन का जो तगैर व तबदल है, जो उसकी रुईदगी है, या उसके उसका पत्थर है, शजर व हजर है, किसी पहचान से भी हो, लेकिन उसकी अहमियत जो है वो बुनियादी तौर पर वहाँ के बसने वालों से होती है। कि अगर हम अपने वतन अज़ीज़ का नाम लें तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, पाक सरज़मीन, और इसे अगर आप बहस करते आएँ तो पाक तरीन जो जगह हमारे नज़दीक होती है वो खाने खुदा होती है। इस मुतरादिफ हिस्सों में हमारे वतन अज़ीज़ का नाम आता है कि खाने खुदा है जो अल्लाह करीम ने अपनी मखलूक को अता फरमाया, और इसकी तामीर में कितना खून लगा है, कितनी इज्जत जो है इसके गारे और मिट्टी की सूरत में इसकी तामीर में इस्तेमाल हुई है लोगों की, आज हम नहीं जानते। अल्लाह उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्हें ये कुर्बानी देना नसीब हुआ। अब जब हम रियासती हिस्सों को देखते हैं मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, इस रियासत के साथ जो मोहब्बत है, इसके साथ जो शौक है, इसका जो एहतराम है, इसमें जो एक किरदार का अदा करना है, ये आप देखें हमें दीनी अहकाम में मिलते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिससे मुतल्लिक दीन इस्लाम तालीम नहीं अता फरमा। अब ये ज़िम्मेदारी है जिसे मुखातिब किया जा रहा है कि वह अपने हिस्से का किरदार अदा करे। तो इसी तहत जब हम बात कर रहे थे दावत की, तो उसमें मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये है कि अमल करते हुए हक का पहुँचाना, ये भी दीन इस्लाम के अहकामात में अपने अपने दर्जे के मुताबिक ये बात भी दाखिल हो जाएगी। अब जब हम दावत दे रहे हैं तो रियासत कानून का नफाज करती है और बात इनफरादी हैसियत में जब बात दावत की आती है तो उस दावत में हमारा अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे तरगीब मिले, जिससे तालीम मिले, जिससे रगबत मिले, न कि किसी को उकताहट हो। ऐसा देखने में आता है कि हम मौका बे मौका दावत दीन पर जब बात करते हैं तो जो पहले नमाज नहीं पढ़ रहा उसे हम अगर मौके की नज़ाकत न देखें और जहाँ जब मुलाकात हो या बे मौका हम उसे बात कर दें, अगर उसने ये लफ्ज़ अल्लाह ना करे कह दें कि जा मैं नहीं पढ़ता, उसके पल्ले फिर क्या रहा, और जिसने दावत दी उसके अपने ज़िम्मे कितना बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि न पढ़ने का तो गुनाह था। सरीयन जब उसने इनकार किया तो उसके इनकार करने के असबाब में दावत वाला, दावत दहिंदा भी तो शामिल हो जाएगा। फिर एक और पहलू भी देखना चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए मामला अल्लाह करीम के सुपुर्द कर दिया जाए। इसलिए हम तो ये समझते हैं या देख रहे हैं कि फलां नमाज नहीं पढ़ रहा। अब ये मामला ऐसा है कि खालिक और मखलूक के माँ बहन है, ज़ाहरी पहलुओं में तो है कि वो नमाज अदा नहीं कर रहा। सबसे बड़ा हुक्म फ़राइज़ का आया, फ़राइज़ में बुन पहला हिस्सा नमाज का आया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे मोमिन की पहचान नमाज इरशाद फरमाया कि बेनमाज हम में से नहीं, यहाँ तक इरशाद फरमाया गया है। अब हमें क्या मालूम कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा या उसे सजदे की तौफीक ही नहीं हो रही। ये वो मामला है जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है। तो हमें अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें देखते हुए, उनका तदारुक करते हुए, जहाँ बेहतरी जिस कदर हो सके उसे अख्तियार करते हुए, अपनी सांसों की तकमील, अपनी कदमों की तकमील, अपने रिज़्क़ की तकमील, यानी जो फुर्सत हमारे पास है उसकी तकमील मुस्बत पहलू से हो। अब जहां जितना जिसका तजावज़ हो, कुरान करीम बयान फरमा रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को अलग अलग कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, उनसे आपका कोई ताल्लुक है। और जिस तफरीक ने इतनी गहराई में जा फेंका कि वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया जा रहा है कि मेरे अभी बाप का उनसे कोई ताल्लुक, तो ये समझना मैं ये चाहता हूं, मुझे ये पसंद है, ये देखे कहां पहुंचा देता है। ऐसी तफरीक जो जिंदगी में मामलात में मुआशरे को मुकाबिल ला खड़ा करती है, जहां एक दूसरे का ताउन दरकार है, वहां एक दूसरे का बंदा तकलीफ का सबब बन रहा होता है, और दीन हक का जितना भी तजावुज है उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का रुख अनवर दूसरी तरफ होगा जहां हक है, और जो गलत अमल इख्तियार कर रहा है वो अपना रुख उल्टी तरफ लेकर जा रहा है, और जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया जा रहा है कि मेरे हबीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, तो वहां फिर रहमत बारी ताला तक रसाई कैसे कोई पाएगा। तो ये बातें अमूमी नहीं हैं, अल्लाह करीम का इरशाद है, कलाम ज़ाती है, अल्लाह करीम ने मखलूक के लिए हमारी रहनुमाई के लिए इसे इरशाद फरमाया है। और कितनी ही बरकत है कि मैं अगर अपने आप को देखूं, यकीन माने तो मैं नदामत महसूस करता हूं तलावत करते हुए कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मुझे अल्लाह करीम का कलाम जो है उसे पढ़ना नसीब हो, क्या मेरी ज़बान इस काबिल है कि मैं वो अल्फाज अदा करूं जो रब्बे कायनात ने अता फरमाए हैं, जो लबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नसीब हुआ। तो कैसा कलाम है, कैसी अजीम अता है, कितना करम है मेरे अल्लाह का। तो अपने आप को देखता हूं तो नदामत महसूस करता हूं कि जहां हमारी तलख अल्फाज थे, जहां हमारे गैर मुनासब अंदाज थे, और कहां अल्लाह करीम ने कलाम जाती से नवाजा। तो ये तो ऐसा हिस्सा है कि इब्तदाओ इंतहा दिन की कलाम जाती से नसीब हो, तो क्या खुशबख्ती है कि इब्तदाए जो मामलात है उसमें तलावत की जाए, इंतहाए अवकात जब बंदा रात आखिर को पहुंचता है सोने की तरफ जाता है तो तौफीक हो कि फिर तलावत नसीब, तो सुबह शाम अल्लाह करीम का कलाम नसीब हो। कैसे कैसी बड़ी अता है। तो जरूरी है कि इस अता को समझा जाए, इस समझ को इख्तियार किया जाए। अल्लाह करीम उलमाए कराम की खिदमात को कबूल फरमाए। हम दीनी पहलुओं को जब देखते हैं, दीनी शोबाजात को देखते हैं, तो हम उन्हें मुकाबिल देखते हैं। अजीब बात है, रुख एक तरफ का है और एक तरफ का रुख मुसाफिर माँ बहन वो मुकाबिल के गलत और सही तक की बहस पर चले जाए, तो ये कितनी नासमझी होगी, कितनी अपने आप के साथ ज्यादती होगी। क्योंकि दीन के शोबे हैं, उन शोबों में जिसको जितना काम नसीब है, अल्लाह करीम जिसे जितना अता फरमा रहा है उसकी खुशबख्ती है, चाहे वो इससे तहरीर व तकरीर से मुतल्लिक हैं, दावत व तबलीग से मुतल्लिक हैं, जहाद से मुतल्लिक हैं, मदारिस के हिस्से हैं, ये सारे हिस्से दीनी अहकामात के तहत आते हैं। इसी तरह जब बात आती है खानकाह की, तो खानकाह वो जगह है जहाँ हर शोबे का हिस्सा पाया जाता है। और हमने क्या समझ लिया है कि मदारिस का जो निज़ाम है ये तो ऐसा है जिसका कोई दुनिया में हैसियत है नहीं। दुनिया का मालिक, उसका हुक्म समझने का जो इससे सबब हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। اور وہ علوم جو محتاجیوں تک پہنچا رہے ہیں، مخلوق ایک دوسرے کی محتاجی میں جڑ رہی ہے، ان علوم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمال ہے۔ یہ عجیب بات ہے، دین کے لیے جو وقت صرف کرتا ہے اسے کہتا ہے یہ وقت ضائع کر رہا ہے، بیکار گزار رہا ہے۔ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسی حالت ہے۔ اسی طرح جب بات خانقاہ کی آتی ہے تو جو انکار ہے وہ تو ہے انکار، جو اقرار ہے دکھ وہاں اور زیادہ ہوتا ہے، کہ اقرار معمولات دنیا کے لیے ہے کہ جو دنیا کی آسائش ہے وہ خانقاہ سے حاصل کی جائے۔ کمال ہے بھائی، جہاں سے دنیا نہیں پروردگار عالم کے ساتھ قرب کے رستے میسر آتے ہیں اور وہ پہلو نصیب ہوتے ہیں جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر جاری ہے، کمال ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں جو سر درد ہے اس کی دوا میسر آ جائے، یہاں جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کلامی کر رہا ہوں یا خود سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں، آئے روز یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور دل چاہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ اس راستے کے جو نکات ہیں ان پر بات کی کرو، جو اسباق ہیں وہ سکھاؤ، جو وہ کیفیات ہیں ان کو سمجھنا ہے، وہ کیسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی محنت کیسے کرنی ہے، کیسے ذکر کا انداز ہوگا۔ اور اس وقت ذکر خفی بہت کم جگہ میسر ہے، اور کثیر جگہیں جو ہیں وہاں ذکر جہر کرایا جاتا ہے، تسبیحات کرائی جاتی ہیں، اور یہ پرانا معمول آ رہا ہے مشائخ کا کہ آنے والے کو اس کی استعداد کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج کی دنیا الگ ہے، نسبت کا حیثیت کا فرق ہے، چونکہ جتنا وقت پیشتر ہوگا اتنا قرب ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا، اس کی برکت، اس کا مقام، وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو ماپا جا سکے، وہ برکات اپنی جگہ۔ لیکن جو عمومی مزاج انسانی ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ سوال آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے انداز رہے ہیں۔ ہر آنے والے کی وہ تربیت کرتے تھے، اسے کچھ تسبیحات بتا دیتے تھے کہ عبادات جو حکم ہے فرائض کے ساتھ یہ آپ اضافی نفلی عبادت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عمل بھی چونکہ مسنون تسبیحات ہیں، کوئی عمومی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو آیا کریمہ کسی کا حصہ بتا دیا، تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے کوئی حصے بتا دیے کتنی تلاوت کر لو، تو چند لوگوں کو ذکر خفی سکھایا جاتا تھا۔ اللہ کریم کلزم فیضات حضرت مولانا علی ارخان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی محنت قبول فرمائے۔ آپ نے فی زمانہ میں جیسے کہتے ہیں مجدد طریقت، آپ نے جو آمیزش، جو مرور زمانہ کی آمیزش تھی اس راہ میں، آپ نے اسے کاٹ چھانٹ کر صاف لطائف و مراقبات کے ایک ایسی تربیت جو ہے اس کا نظام، باقاعدہ نظم قائم کیا۔ اور حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کے حکم کو لے کر اتنی محنت اور اس پر کاوش کی، الحمدللہ وہ تربیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری نسبت سے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ میں بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نسبت سے اللہ اللہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، اور اگر اللہ اللہ کر کے بھی پھر ہم نے ذات منوانی ہے تو پھر ہم نے اللہ اللہ کیا کی، फिर हमारी अल्लाह अल्लाह को क्या शर्फ़ कबूलियत नसीब हुई कि नतीजे में हम अपनी अनादियत पर आ जाएं। इसलिए भाई हमारा कुछ जो कुछ है उसका है, उसकी मखलूक है, ये उसका एहसान है कि इस शोबे में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करने की तौफीक उसने अता फरमाई है। चे जाए कि बंदा अपनी बात करे, लूँ लूँ और लमा लमा शुक्र में गुजर जाए कि ये उसका एहसान है कि उसने तौफीक बख्शी, तो भी ये शुक्राना कम है। वो गफूर रहीम है, किसी बद किरदार को प्यासे कुत्ते का पानी पिलाना वो ऐसा पसंद करे कि उसे बख्श दे, गफूर रहीम। और उसका एहसान कि वो इस बहर से मुनसलिक फरमाए और आज इस वक्त में जहाँ रिवाजात हकीकत के तौर पर पेश किए जाते हैं और हकीकत पर जो अमल पैरा हो उसे कहते हैं कि इसे तो क्या होगा, तो ज़ाया होगा, तो किसी काम का नहीं था। ये सवाल पूछो जहाँ कुरान करीम बयान फरमाता है कि तुम पास बैठे होते हो लेकिन अल्लाह तुमसे ज़्यादा करीब है उस पर जब पिंडली पिंडली के साथ सख्ती पर आ रही होती है, तो वो फरमाता है लौटा सकते हो तो उसे लौटाओ वापस जिसकी रूह कब्ज़ हो रही है। उस वक़्त पूछे कोई अहम कौन सा हिस्सा था ज़िंदगी गुजारने का, और अक्सर जब बंदा अपने अख्तिताम को पहुंचता है तो इस बात की तो समझ आ रही होती है, लेकिन अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि जब इख्तियार करने की सकत है, वजूद में ताकत है, तो ये बातें समझ। तो खानकाह को खानकाह के नाम से मौसूम किया जाए, शेख के नाम से किसी फर्द पर बात की जाए, बुनियादी तो मकसद दीन का सीखना है तो बात किसी शोबे की भी होगी दीन इस्लाम की, हदूद व कयूद जो है वो कुरान व सुन्ना है। अगर कोई तलवार उठाकर गर्दन काटने या कटवाने को खड़ा है तो हदूद व कयूद दीन इस्लाम की हैं, उसकी ज़ाती मर्जी नहीं हो सकती। इसी तरह बात दावत व तबलीग की है, जितनी मर्जी असनाद अफ्ताह की हासिल कर लो, बुलंदियाँ फ़ारग़ तहसील की हासिल कर लो, हदूद व कयूद जो है वो शरी है, उसके बाहर को नहीं जा सकता। इसी तरह बात कैफियत कल्बी की आएगी तो कैफी शोबा है, मजीद नज़ाकत है, कैफी शोबा है, खफी हिस्से हैं, तो अख्वा के इन पहलुओं को और नाजक समझना चाहिए। चूँकि अमल वो साले जिसका नतीजा कुरान और सुन्नत के तौर पर नसीब, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि बंदा ये समझे कि मैं जैसे चाहूँ ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ और मैं मनाजिल तय कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। इस नाम पर ऐसा भी देखने में आया है कि यहाँ तक कहा जाता है कि जी दिल में पाकीज़गी है तो उसी से नमाज कायम होगी, नमाज कायम करने का हुक्म है। तुम बड़े मुबल्लिग हो गए हो, बड़ी बारीकियाँ समझ रहे हो, तो जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, क्या जवाब है तुम्हारे पास कि उसके मुकाबले खड़े हो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, मुबारक हस्तियों, सारा जहान जमा कर दिया जाए ना जी, अम्बिया अलैहिस्सलाम के हवाले से बात नहीं, बाद अज़ अम्बिया बात कर रहा हूँ, तो सारी मखलूक को ईमान नसीब हो, कैफियात नसीब हो, बुलंद तरीन मनाजिल नसीब हों तसव्वुफ़ में, उन सब मनाजिल को एक जगह जमा कर लिया जाए और उस बुलंदी को अगर تبع تابعین کی جو جوتی کی خاک ہے اس کے ساتھ رکھا جائے وہ خاک بلند ہے, یہ بات مقابل نہیں آ سکتی. بات میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے وہاں مقابل کی بات کرے. دنیا میں ایسی دنیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر کھینچی گئی, مخاطب کرنے کو. ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں جلوہ افروز ہیں, میاں وہاں دنیا نہیں ہے, سننے میں آتا ہے, کہتے ہیں ایک دوسرے کو, کہتے ہیں گئے تو میرا سلام دینا, مراقبات میں ہو تو مجھے توجہ دلانا, کہنا اور ہونا بڑا فاصلہ ہے. برزخ میں جہاں آپ جلوہ افروز ہیں وہاں جرت نہیں ہے کسی روح کی ایسی آنکھ کا اٹھانا کہ اگر اجازت نہ ہو تو وہاں خود سے اٹھا سکے, دارالعمل نہیں رہا. وہاں کی حد ادب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے, اور جتنی آشنائی نصیب ہوگی اتنی زبان گنگ ہو جائے گی. تربیت میں ایسے ایک دفعہ بیٹھا تھا, استاد کسی کو سکھا رہے تھے, مجھے کوئی بات پچھلا فرد نہیں یاد, لیکن میں نے انہیں عرض کی تو اسے بات تربیت کے حوالے سے کر رہے تھے, تو میں نے انہیں عرض کیا کہ حضرت اگر شیخ المکرم کمرے میں بیٹھے تشریف رکھتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کو کہیں اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ چلے جاؤ, اب آ جاؤ پھر اٹھ جاؤ بیٹھ. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا خیال ہے, دربار رسالت میں یہ ممکن ہے؟ تو وہاں کہ ایسے نگاہ اٹھا سکے, بغیر اجازت نگاہ نہیں اٹھ سکتی. اور اللہ کریم وہاں حاضر ہونا عطا فرمائے, تھوڑی خوشبختی کہ جہاں آپ جلوہ افروز ہیں مخلوق پر رب کائنات کی رحمت کا سبب جو ذات امام الانبیاء ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے, مزہ سامنے کر حاضری نصیب, تھوڑی بات. یہ وہ عطا ہے کہ جوں جوں گردش ایام ایسے اپنا تکمیل کر جائے گی, حقائق کھلتے آئیں گے, بات بھی سمجھ آتی جائے گی, بات کی نزاکت بھی سمجھ آتی جائے گی. اللہ اسے جوڑے رکھے, اور بڑی بنیادی شے ہے کہ اللہ کریم اس سے جوڑے رکھے کہ یہ حق نصیب رہے, اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تصوف مانتا کوئی نہیں تھا, اللہ نے انہیں ایسی قوت عطا فرمائی, ایسی دسترت فقی حصوں کی عطا فرمائی, ایسے دلائل جمع فرمائے, ایسی تربیت کی, ایسی عملی صورت مخلوق کو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ذاتی طور پر کہ تصوف کا انکار محال ہے. ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ذکر خفی کیوں اور کیسے, ہمیں کہتے ہیں کیسے کرنا ہے بتاؤ تو صحیح, بڑا بڑا فرق ہے. تو کسی کو پہلے منوانا اور سکھانا بڑا فاصلہ ہے, اور جو مانا ہوا آئے اس کی تربیت کتنی آسان. تو یہی جب میں یہاں دیکھتا ہوں تو ہمارے بھائی جو اہل حدیث, چونکہ قرآن و حدیث سے باہر کوئی نہیں جا سکتا, तो वो कैफियत पर बहस करते के लिए तो वक्त लगता है इस तक पहुँचते पहुँचते। इसी तरह जो भाई देवबंद से ताल्लुक रखते हैं उनसे कम लेकिन वक्त लेते हैं, क्योंकि समझाना सिखाना तो अहले बरेली जो हैं वो जैसे को माना बाना हुआ है तो उसकी तरबियत उसे सिखाया जाए। लेकिन हर दो हिस्सों में किसी को समझा के कि वो इन पहलुओं से आशना हो फिर सिखाया जाए, या वो घर से मान कर ऐसा आ रहा हो कि आप गलत और सही जो कह रहे हो उस पर अमल कर, हर दो सूरत में आपका इम्तिहान है। अगर कोई सख्त है नहीं मान रहा तो जिम्मेदारी है उस तक हक पहुंचाने की, उसे डांग छोटा नहीं कर, और अगर कोई मान रहा है तो उसे अपने सजदों पर लगा देना जुल्म होगा। उसे हकीकत हाल जो है उस तक पहुंचाना है। अल्लाह करीम हम सबको आपस की मोहब्बत अता फरमाए, और इसका एक ही रास्ता है दीन अल इस्लाम जो कुरान करीम ने हमें बताया है, जो इरशाद बारी ताला बड़ा वाज़ेह बयान फरमाया। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वाहिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।